क्यों कर रहे हो तुम ये सब? What do you mean? क्या कर रहा हूं मैं? कायरव की भौंएं सोचने के अंदाज में सिकुड़ गईं। ये सब जो तुम मेरे लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्या मोटिव है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो, क्या कर रहा हूं मैं? क्लब में जब तुम्हारा वो दोस्त, दुश्मन जो भी है, वो कमीना आदमी मुझे छू रहा था, तो तुमने बीच में आकर मुझे वहां से भेज दिया, मुझे लिफ्ट ऑफर की, मेरे लिए वापस आए, उस घटिया आदमी के गंदे इरादों का शिकार बनने से मुझे बताया, अभी भी मेरे फिक्र कर रहे थे। तुमने ही कहा था ना कि वो तुम्हारा दुश्मन है, तो मेरे लिए तुम उसके अगेंस्ट क्यों गए? अब वो तुमसे और ज्यादा चिढ़ेगा। तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया, पर मैंने रिजेक्ट कर दिया, तुम्हारी इतनी इंसल्ट भी की, फिर तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, मेरे सामने कितने ही अच्छे क्यों ना बन लो, पर मैं तुमसे ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं करूंगी। इनाया ने जिस अंदाज में ये बात कही, कायरव ना चाहते हुए भी मुस्कुरा उठा। तुम्हें लगता है कि मैं ये सब तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम मेरी डील को एक्सेप्ट कर लो? इनाया अब भी उसे घूर रही थी, उसकी तरफ से खामोशी ही रही, तो कायरव ने ही संजीदगी से आगे कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बात सच है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी डील एक्सेप्ट कर लो, और मैंने अभी भी हार नहीं मानी है, लेकिन आज मैंने जो भी किया उसके पीछे मेरा कोई मोटिव नहीं था। तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की होती तब भी मैं यही करता। जैसे आज मैं अमन के रास्ते में आया हूँ, वैसा पहले बहुत बार हो चुका है। मैंने बहुत बार उसे उसके घटिया मकसद को पूरा करने और इनोसेंट लड़कियों की लाइफ बर्बाद करने से रोका है, इसलिए वो मुझे अपना दुश्मन समझता है। इसके बाद कुछ सेकंड रुकते हुए उसने सीरियस अंदाज में कहा, वैसे तो तुम कहाँ जाती हो, क्या काम करती हो, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, फिर भी एक एडवाइस दूंगा, तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी मत करो, पर ये काम छोड़ दो, ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, क्लब है ये, यहाँ कैसे कैसे लोग आते हैं, जितनी खूबसूरत तुम हो, तुम्हें देखकर किसी की भी नीयत बिगड़ जाए। जैसे तुम्हारी बिगड़ गई है, इनाया ने एकदम से कहा। कायरव पूरी तरह चौंका और हैरानगी से सवाल किया, वॉट, अब ऐसे आंखें फाड़ कर क्या देख रहे हो मुझे? इनाया ने झुंझलाते हुए सवाल किया। कायरव के एक्सप्रेशन बदल गए। मैंने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया है, कुछ गलत कहा है? नहीं, पर तुम शादी के लिए मेरे पीछे तो पड़े हो। शादी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, और उसके पीछे कुछ रीजंस हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अच्छा, तो तुम कहना चाहते हो कि मेरी ब्यूटी का असर तुम पर नहीं हुआ? इनाया ने आंखों को बड़ा बड़ा करके उसे देखा। कायरव की निगाहें पल भर को उसकी हसीन चेहरे, उसकी आंख के नीचे मौजूद तिल पर ठहर गईं, पर जल्दी ही उसने खुद को उन गहरी काली कजरारी आंखों में खोने से बचाया और निगाहें फेरते हुए बोला, नहीं, और अब मेरे पास तुमसे बहस में बर्बाद करने के लिए फालतू टाइम नहीं है, तो तुम्हें जो सोचना है सोचती रहो, मैं जा रहा हूँ। इसके बाद कायरव एक सेकंड के लिए भी वहां नहीं रुका, तुरंत ही पलटा और लंबे लंबे कदमों से चलते हुए कार में बैठ गया। अपनी सीट बेल्ट लगाकर वो कार स्टार्ट करने ही वाला था कि दूसरे तरफ के विंडो पर नॉक हुआ। कायरव ने नजरें घुमाई, वहां खड़ी इनाया इशारे से उसे कुछ कह रही थी। कायरव ने जैसे ही कार अनलॉक की, इनाया डोर खोलकर अंदर बैठ गई। इस लिफ्ट के बदले मैं तुमसे शादी के लिए हाँ नहीं कहूंगी, ओके? पहले तो कायरव चौंका, फिर उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुरा दिया और आगे बिना कुछ कहे कार स्टार्ट कर दी। इनाया विंडो खोले बाहर देखते हुए किन्हीं ख्यालों में खोई थी। इनाया, एक बात बताओ, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम मेरी डील को एक्सेप्ट कर लेती हो तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, फिर इनकार क्यों कर रही हो, जबकि मैं तो तुम्हें रियलिटी में मुझसे शादी करने भी नहीं कह रहा। कायरव का सवाल सुनकर इनाया ने पलटकर उसे देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, क्योंकि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, मैं तुम्हें पसंद हूँ, तुम इसलिए मुझसे शादी नहीं करना चाहते, इनफैक्ट तुम तो मुझसे शादी ही नहीं करना चाहते, तुम तो एक डील कर रहे हो, 1 ईयर की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, तुमने शादी जैसे रिश्ते को एक सौदा बना दिया है और मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, मुझे ऐसी शादी नहीं करनी। इनाया ने वापस अपनी निगाहें फेर ली, दोनों के बीच आगे कोई बात नहीं हुई। कार इनाया के घर से कुछ दूरी पर रुकी। इनाया पहले जरा चौंक गई, फिर सर हिलाते हुए सीट बेल्ट खोलने लगी। लिफ्ट देने और सेफली मुझे मेरे घर पहुंचाने के लिए थैंक यू, इसकी जरूरत नहीं है, कायरव हल्के से मुस्कुराया। इनाया कुछ देर उसे देखते हुए कुछ सोचती रही, फिर कार से नीचे उतर गई। जब तक वो अपने घर के अंदर नहीं चली गई, कायरव वहीं खड़ा रहा। उसने आसपास नजरें घुमाई, अचानक ही चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए। अपना फोन निकालकर उसने किसी को फोन किया और वहां से निकल गया। इनाया ने घर में कदम रखा ही था कि सविता जी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। आज जितने टिप उसे मिली थी उसने सब निकालकर उनकी हथेली पर रख दी। पैसे देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई, वो पैसे गिनते हुए वहां से चली गई। इनाया भी थकी हारी अपने बिस्तर पर जाकर गिर गई। उसे न कपड़े बदलने का होश रहा और न ही खाना लाने की ताकत थी। भूख लगी थी पर वो इतना थक गई थी कि हिलने का भी दिल नहीं कर रहा था। आज पूरे दिन के बारे में सोचते हुए ही उसकी आंख लग गई। 3 दिन और यूं ही गुजर गए थे। इनाया ने क्लब वाली जॉब छोड़ दी थी क्योंकि उसके लिए उसकी जान इज्जत पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब उसका सारा सारा दिन जॉब ढूंढने में बीतता था, पर हर जगह निराशा ही हाथ लगी। कोशिश बहुत कर रही थी पर किस्मत ही साथ नहीं दे रही थी। सविता जी के ताने बदस्तूर जारी थे। मानव ने भी उसके लिए जॉब ढूंढ रहा था पर मिल नहीं रही थी। सुबह के 8 बज रहे थे। इनाया घर से कुछ दूरी पर बने गणपति बप्पा के मंदिर आई हुई थी। मानव भी उसके साथ था। दोनों ने दर्शन किए, फिर मंदिर प्रांगण में बने बेंच पर बैठ गए। इनाया, मैं अब भी कह रहा हूँ,
उस प्रपोजल को तुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो खुद देख रही है ना, कहीं जॉब नहीं मिल रही तुझे। इतनी जल्दी कोई ढंग की जॉब मिलेगी भी नहीं। अब बस 2 दिन बचे हैं। अगर उसमें भी तुम्हें जॉब नहीं मिली तो इस बार तेरी आई तुझे और टाइम नहीं देंगी और सचिन से तेरी शादी करवा देंगी। उसके बाद तू चाहकर भी अपने लिए कुछ नहीं कर सकेगी। इनाया बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थी और मानव उसके लिए परेशान था। इस बार इनाया ने पलटकर कुछ भी नहीं कहा और ना ही नजर उठाकर उसे देखा। सर झुकाए खामोश बैठी कुछ सोचती रही। मानव को जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसने उसके हाथ पर अपनी हथेली रख दी। क्या सोच रही है तू, क्या करेगी आगे? अभी तेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो मुझसे पैसे लेकर अपनी आई को दे दे, इससे तुझे टाइम मिल जाएगा, 1 महीने में शायद तुझे जॉब मिल जाए, वरना कुछ और जुगाड़ लगा लेंगे। लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जैसे वो सचिन तेरे पीछे पागल है, जब तक वो तुझसे शादी नहीं कर लेता वो तुझे कहीं भी चैन से जीने नहीं देगा। दूसरा रास्ता, कायरव रायचंद के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले। वो ना सिर्फ तुझे इन सब प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है बल्कि तेरा फ्यूचर भी सिक्योर कर सकता है। वो इतना पावरफुल है कि सचिन तो क्या, उसका बाप भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो प्रोटेक्ट करेगा तुझे और 1 साल बाद तू इन सब से दूर जाकर अपने हिसाब से अपनी जिंदगी बिता सकती है।
मैं पर्सनली सेकेंड ऑप्शन चूज करने कहूंगा। जितना मैंने सोशल साइट्स पर देखा है और रिसर्च करके जाना है, कायरव रायचंद अच्छा इंसान है, तुझमें इंटरेस्टेड है। हो सकता है कि 1 साल साथ बिताने के बाद वो तुझे खुद से दूर ही ना जाने दे, तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। सोच एक बार इस बारे में। इनाया खामोशी से उसे देखती रही। अब भी उसके पास कहने को कुछ नहीं था, पर उसके दिमाग में प्रोटेक्ट करने वाली बात घूमने लगी थी। क्लब वाला हादसा याद आ गया था उसे, जब कायरव ने उसे बचाया था। कुछ देर रुकने के बाद मानव उठकर खड़ा हो गया। चल तुझे तेरे घर छोड़ दूं, फिर मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। तू जा, मैं थोड़ी देर यहाँ अकेले बैठना चाहती हूँ। मानव ने गौर से उसे देखा। आज वो उसकी इनाया लग ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था अपने किस्मत से लड़ते लड़ते अब वो थक गई थी, हार कर अपने हथियार डाल दिए थे, जिंदगी से बिल्कुल निराश हो चुकी थी। मानव ने ठंडी आह भरी और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। इतना मत सोच, बप्पा सब ठीक करेंगे, मुझे अभी निकलना होगा, तू भी जल्दी घर चली जाइयो। इनाया ने सर हिला दिया। मानव के जाने के बाद वो सर घुमाकर सूनी निगाहों से अंदर मौजूद बप्पा की बड़ी सी मूर्ति को देखने लगी। उसकी नम आंखों में अनकही ही शिकायत झलक रही थी। बप्पा, सब कहते हैं तू सब ठीक करता है, तो फिर मेरे साथ ही क्यों गड़बा है सब कुछ? धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा, मंदिर की भीड़ कम हुई। इनाया अब भी कड़कती धूप में वही बैठी थी। अचानक ही कोई उसके और सूरज के बीच आकर खड़ा हो गया। इनाया ने धीरे से सर उठाया। सामने खड़े इंसान को देखकर उसके चेहरे पर अजीब से भाव उभर आए। टू बी कंटिन्यूड।